ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 12050 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਕੈਲਡਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ
9050840 9000 770 AMD ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਡੋਟ ਕਾਮ।
ਸਿਰਾਜ ਸ਼ਫੀਕ, ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ, ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਹੋ ਯਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼, ਸਭੀ ਕੇ ਲਿਏ ਸਿਰਾਜ ਸ਼ਫੀਕ 416-502-8000, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਓਨਡ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਡ।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
Painters of GTA for your home paint or office paint, interior or exterior, popcorn ceiling ko remove karna, water damage, if there are yellow spots in ceiling, call Painters of GTA. Water damage mein agar yellow spots aapki ceiling pe unko remove karke bedaag karenge, texture style painting which is the latest Italian style painting, ya wallpaper lagwana chahte hain to call kijiye texture style painting ke liye Painters of GTA 647-271-1974. Mohammed Salim 647-271-1974।
अयो, इतना खूबसूरत घर,
आपने भी बेसमेंट की रेनोवेशन करवाना है तो रब्ता करो, एक चीता मेरे हाथ में लगा। क्या कमाल की रेनोवेशन और दाम बहुत मुनासिब।
कौन सी रेनोवेशन, टैरिफ लग रहे हैं, भूल जाए सब कुछ।
अरे बाबा चिंता न करो, नैशिक रेनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन, लीगल बेसमेंट, साइड एंट्रेंस, वॉशरूम, किचन, पेंट, फ्लोरिंग, तमाम काम सिटी परमिट के साथ करवा के देते हैं, बहुत मुनासिब दाम है। अब भाई आजमाइश शर्त है, गारंटीड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 416-838-7837
अजीत, सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
Ringing, buzzing, hissing, time to get your hearing checked.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 AM ڈائل پر پروگرام ساز و آواز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور آپ کا ہمارا ساتھ 9 بجے تک تو رہے گا، اور اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا آپ کو انتظار تھا، جس کے لیے آپ بے چین تھے اور تڑپ رہے تھے، آپ کا ہیموگلوبن لیول کم ہو گیا تھا اور نہیں ہوتا، ابھی بڑھ جائے گا، ابھی بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، اب جب آئیں گی نا وہ تو سونامی سے کم نہیں ہے، تو آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. گرما گرم خبریں لے کر ہمارے اسٹوڈیو پہنچ گئی ہیں شازیہ ملک صاحبہ. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسی ہیں آپ؟
علیکم السلام یا شیخ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیف حال؟
زین کلو تمام.
تمام تمام.
کیف انت جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں انا کوئس.
انا کوئس الحمدللہ.
ہاں
مطلب میں بتانا نہیں چاہ رہا کہ مجھے عربی آتی ہے, مطلب پھر لوگ اس پہ بھی مجھے بھی بولیں گے یار عربی بولنا شروع کر دو.
ہاں
نہیں نہیں مجھے آتی ہے عربی بولنی الحمدللہ.
نہیں ہم تو ادھر ایڈ چلاتے ہیں نا آپ کی لینگویج میں بولتے ہیں لوگ, تو ہم بھی اب ہر کسی کے لینگویج میں بولیں گے نا بھائی. بڑا کم جب ہم کرتے ہیں تو ہم کسی اور,
ست سری اکال بڑا کم نمستے,
تو ابھی یہ کیف حال جو ہے وہ کسی اور کا لینگویج تو ہے تو وی اسپیک یور لینگویج.
الحمدللہ مطلب
اس کے لیے نا.
اور ویسے ابھی آپ کو بتایا نا, میں جیسے بتا رہا ہوں میں عرفہ پر سے ہی بتایا, ہم نے تمام آنرز بھی ہے. ابھی یوٹیوب ہمارے لیے اس کے مسئلے کا بہت حل کر دے گا, آٹو ڈبنگ دے رہے ہیں ہمیں. مطلب سمجھے شازیہ جی اور میں بات کر رہے ہیں, امتیاز
لینگویجز میں جا رہی ہے, وہ
فرینچ میں بول رہے ہیں, اسپینش,
اوکے,
ترکش, واللہ اللہ معافی حبیبی,
یہ کیا کلا مامی حبیبی,
واللہ ظلم کبیرہ مشکل کبیرہ, تمام 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 خلاص حبیبی ماما تمام تمام. نیوز سنا بولیں گے عامر بھائی آج آپ کو بخار ہو گیا فرائیڈے کے دن. نہیں بھائی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نیوز, اس کے بعد ہر کینیڈین کو بخار چڑھ گیا, چاہے وہ گورنمنٹ لیول کے کینیڈینز ہوں عام کینیڈینز
گورنمنٹ.
ابھی تو مجھے نہیں معلوم ہے کارنی صاحب کا بھی امیڈیٹ کیا بھی آپ اگر خبروں میں, ابھی تک ان کا ریپلائی کیا آیا ہے
وہ بستر پہ لیٹے گی ابھی,
کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نہیں تھا آنند صاحب تو دیکھ رہے تھے لیکن کیونکہ میوٹ چل رہا ہے میں ان کی تصویر تو دیکھ پایا لیکن ان کا بیان کیا ہے اور کیا ریئیکشن آ رہا ہے ہماری ٹیم کینیڈا کا, تو وہ
سنا دیں گے
ابھی خبروں میں آپ کو ریئیکشن مل جائے گا. اور کارنی صاحب جو کہتے تھے کہ جی آئی ایم کلوزسٹ فرینڈ ود ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہتے تھے کہ از اے نائس گائے از اے گڈ مین, اور کافی انہوں نے تعریفیں بھی کی تھی, ابھی بھی آئے تو تعریفیں ہی کر رہے تھے, تو یہ کہاں کوئی ایک بیچ میں کوئی غدار ہے ہمارے بیچ میں,
وہ کینیڈا کی کوئی ایک چیز پکڑ لیتے ہیں اصل میں نا, بیچ میں سے ایسے پکڑ لیتے ہیں.
تو مجھے یہ ہوتا ہے شازیہ جی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کینیڈین کو, مطلب مجھے بات بتائیں, مجھے بات بتائیں, یہ جو ڈیجیٹل سروس ٹیکس ابھی دیکھیں یہ آنندہ آنند صاحبہ جو ہے وہ اس وقت ٹی وی پہ آ رہی ہیں, آئی ڈونٹ نو کیا کہہ رہی. اب ڈیجیٹل سروس ٹیکس پر انہوں نے کہا کہ جو ہماری ٹیکنالوجی بیسڈ جو کمپنیز ہیں امریکہ کی, یہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ ویسے ہی آپ نے 400% جو ہے وہ ٹیرف لگایا ہوا ہے ڈیری کے اوپر ہمارے فارمرز کے اوپر, اور اوپر سے اب آپ نے جو ہے یہ ڈیجیٹل سروس ٹیکس لگا دیا. آپ کو معلوم ہے ڈیجیٹل سروس ٹیکس جو کینیڈا نے جو کینیڈینز کمپنی میں تھی وہ لاسٹ ایئر ہی لگا دیا تھا, لاسٹ ایئر اکتوبر میں میرے پاس ای میل آ گئی کیونکہ ظاہر ای کامرس سے.
یہ جو والا آپ کا یہ ڈفرنٹ ہے, یہ جو اسپیسیفکلی یہ جو بات کر رہے ہیں نا سروس ٹیکس جس کے اوپر وہ ناراض ہو گئے ہیں ٹرمپ صاحب, اس کی ابھی میں خبر بھی سناؤں گی لیکن پھر بھی میں پہلے بھی آپ کو بتا دیتی ہوں, یہ 2021 میں لبرل گورنمنٹ جو تھی نا ٹروڈو صاحب کی, یہ 2021 میں انہوں نے لگایا تھا جتنے بھی یہ جو امریکن کمپنیز تھے گوگل ہے میٹا ہے
جو آن لائن ایڈز چلائیں گے
جو کینیڈین کنٹینٹ یوز کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ زیادتی ہے کہ ہمارے جرنلسٹ جو ہیں یہ ساری سٹوریز جنریٹ کرتے ہیں اور آپ ایز از اٹھا کے اس کو چلے جاتے ہیں, اور یہ صرف کینیڈا نے نہیں کیا تھا یہ دوسرے ملکوں نے بھی کیا تھا, تو اس پہ کینیڈین گورنمنٹ نے ان کو ان ساری کمپنیز کے ساتھ جو ہے ٹروڈو صاحب کی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ڈیل بنائی تھی اور یہ انہوں نے اگری کیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر ہم کینیڈین کنٹینٹ جو ہے وہ یوز کریں گے. آپ کو بیچ میں پتہ ہے گوگل سب بند ہو گیا تھا,
جی جی نیوز نہیں آ رہی,
نیوز نہیں آ رہی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کنٹینٹ کینیڈا میں اویلیبل نہیں ہے ہوئے گا اور یہ ہوئے گا, تو گوگل نے بھی بڑی, اور
ابھی بھی فیس بک نہیں کام کرتی,
ہاں فیس بک, تو انہوں نے بھی بڑی بدماشی دکھائی تھی کہ آپ لوگوں کا نقصان ہے ہمارا نقصان نہیں ہے, لیکن کچھ جو کمپنیز تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے ہمیں آپ کا کنٹینٹ چاہیے اور وہ ہمارے اوپر, کیونکہ اس کے اوپر یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے سی ٹی وی کی ایک نیوز ہے, میں ایگزامپل دے رہی ہوں, یا سی پی ٹی وی 24 کی ایک نیوز ہے, گلوبل نیوز جو ہمارے ادارے ہیں ان کے, گلوبل میل, یہ سارے جو ادارے تھے ان کی جب ٹورنٹو سٹار ہے ان کی جب آتی ہے تو اس کے اندر ہٹس ملینز میں آتے ہیں ان کو, کیونکہ بہت دفعہ جیسے جو ان کی جو ایکسکلوسو سٹوریز ہوتے ہیں نا ان کے اوپر ملین, تو کینیڈین گورنمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ ہمارا کنٹینٹ جو ہمارے جرنلسٹوں نے ہارڈ ارنڈ جو کام کیا ہے, یعنی آپ دیکھیں نا میں آپ کو اپنا ہی بتاتی ہوں کہ جس وقت کسی منسٹر کا یا کسی ایم پی کا یہاں پہ ہم نے انٹرویو کرانا تھا 50,000 آپ ان کو فون کرتے ہیں اور ای میلیں بھیجتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک سٹوری ملتی ہے, رائٹ, تو کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ان کا جو ہارڈ ورک ہے دے شوڈ بی پیڈ فار دیٹ, ایز اے ریزلٹ جتنے یہ این इंजन हैं आपके, ये सारे हमारी कैनेडियन कंपनीज जो उनको पे करेंगे। अब ट्रंप साहब इसके ऊपर भड़क गए हुए हैं, वो कहते हैं कि क्यों तुम टैक्स कर रहे हो भाई, ये अभी नया कॉर्नी साहब ने, इट इज 2021, तो तुमको क्या करना चाहिए ट्रंप साहब, तुम बैठो इनके साथ और इनको बोलो जी कि अब मैं, जैसे कि तुमने नेफ्टा के बारे में बोला था ना, हम उसको रिवाइज करेंगे, हम फिर से इसको साइन करेंगे, तो आप इसके लिए भी इनके साथ बैठो, बात तो करो। आप एक दिन फोन उठाते हो या आप
अनप्रेडिक्टेबल,
हाँ उधर अपने उसमें व्हाइट हाउस में आते हो और बस अनाउंसमेंट एक कर देते,
बस, बस।
अच्छा जी खली चाइना के ऊपर 400% वो, अरे बात तो पहले करो भाई जान, पहले सुनो तो सही, अगले का भी तो मुद्दा सुनो, उसकी भी तो, अगले की भी तो बात सुनो, खाली आपको अपना ही सुनाना है खाली, उसका भी तो सुनो। तो इन्होंने वो जो 2021 का ये जो रूल जब से चल रहा था उसको, वही मैंने कहा ना, आप किसी चीज को पकड़ते हैं एक हाथ से, ये एकदम बीच से चीज उठा लेते हैं, बीच से उठा के और कह देते हैं अच्छा जी मैं तो अब ये खत्म। और ये इन्होंने नहीं किया, ये कॉर्नी की गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये प्रीवियस गवर्नमेंट का था, तो आप उनको बोलो जी आपकी प्रीवियस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, आओ बैठो इसको चेंज करो, तो ये चेंज कर लेते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, और एक जो डिजिटल सर्विस टैक्स इन्होंने लगाया, मैं आपको बताऊं, वो उन पर भी लगा दिया, जैसे कि अमेरिकन सेलर्स हैं या इवन कैनेडियन सेलर्स हैं, फर्ज कर लेंगे जो ऑनलाइन सेल्स करते हैं, पहले ये टैक्स नहीं था, इन्होंने उसके ऊपर भी जो टेक्नोलॉजी जितनी कंपनियां से आपने बताया, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और दूसरी जो कंपनीज हैं, उनके ऊपर तो उन्होंने पहले ही लगा दिया था, लेकिन इन्होंने अक्टूबर में, ये मुझे याद है, इन्होंने लॉन्च किया था डिजिटल सर्विस टैक्स के लिए, आई थिंक 2% का ये टैक्स था, और जो भी आप ऑनलाइन, मतलब जितनी भी आप एडवर्टाइजमेंट यूज करेंगे ना कॉस्ट, यानी फर्ज कर लें जैसे कि हम ई आवाज, अगर हम अपना कोई एड रन करते हैं या कोई और कंपनी है वो अपना एड रन करती है, तो उस एड रन करने के ऊपर जो है ना, उन्होंने उसके ऊपर जैसे HST होता है ना, HST के ऊपर एक डिजिटल सर्विस टैक्स लगा दिया था, वो था 2%, और वो अब भी है जिस पर, अच्छा अब आपको मालूम है कि इनके जितने बड़े बड़े जो इनके दोस्त यार हैं, एक तो शादी कर रहे हैं माशाल्लाह, अभी उनकी शादी चल रही है, तो वो इन चीजों से, हालांकि कहने को 2% तो समटाइम बहुत छोड़ा था, लेकिन उनका जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा है, बिलियंस में पहुंच रहा है, तो वहां उन्हें जो अभी जो तकलीफ भी उनको ज्यादा हो गई, उनको पता चला कि अच्छा ये तो बिलियंस में जा रहा है, और उन्होंने जिक्र भी किया इस चीज का कि ये तो ज्यादती कर रहे हैं आप हमारी टेक कंपनीज के साथ, जिस तरीके से टैक्स लगा देते हैं आप, एड्स हमें रन करने दे रहे हैं, वही बात है आपकी कि न्यूज जो है वो अगर किसी ने रिपोर्ट किया कनाडा, कहता है जी हमें उसके ऊपर दें, ये तो एक अलग मामला है, न्यूज वाला जो आप बात कर रहे हैं ना, जो कंटेंट शेयरिंग, ये एक अलग मामला है, ये डिजिटल सर्विस टैक्स इन्होंने कनाडा ने, आई डोंट नो कि क्या समझ के लगाया, ट्रूली स्पीकिंग जब ये लगा था उस वक्त भी मुझे वो था कि यार
इसके दो कंपोनेंट्स थे ना, एक तो इसके ऊपर था और एक जो आप,
और एक जो मैं बता रहा हूं, तो अब जाहिर है गुस्सा कहीं ना कहीं होना मुझे लगता है ट्रंप साहब का बनता
है, बैठो तो सही बात,
हाँ ये एक अलग बात है,
बात तो करो, चलो
जी बैठना, तो
आप आके एकदम से बयान दे देते हो बिना अगले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू, उसका तो
नहीं, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे लगता है कि ट्रंप साहब को ना थोड़ा सा मीडिया में रहने का, और आज तो एक रिपोर्टर ने कुछ बाइडेन साहब की जो है वो कुछ तनकीद की, तो बड़े खुश हुए कि, और बल्कि उन्होंने कहा भी कि दिस इज नॉट अ प्लांटेड सवाल और ये कुछ, अगर आपने वो सुनी होगी तो, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, यू आर अ ग्रेट पर्सन, और नाम पूछा दो दफा, ये मतलब उनका माइंडसेट आप समझ देख रहे हैं क्या है,
खुशामदी है ना, खुशामदी है, वो चाहते हैं सारे मेरे पास ना,
बस खुशामदी रहे,
गोरा जो है ना हमारा गोरा दोस्त, वो कहते हैं स्पिन डॉक्टर्स, सारे मेरे पास स्पिन डॉक्टर,
और रिपोर्टर्स भी बोल रहे हैं
इस घंटे, तो ये सब देर पार्ट ऑफ स्पिन डॉक्टर, तो वो कहते हैं सारे स्पिन डॉक्टर्स में मेरे सारी तारीफें होती रहे, मुझे बोले कि यू आर द किंग, यू आर द ओमनिपोटेंट, यू आर द बेस्ट पर्सन, जैसे मैंने आपको कल हिलरी क्लिंटन की मिसाल दी थी कि उसको क्रूकेड हिलरी, क्रूकेड
हमेशा कहता है,
जब उसने उसके बच्चों की तारीफ कर दी, एकदम ठंडा हो गया, एकदम जमीन पे आ गया, कहता है यू आर अ ग्रेट पर्सन, यू आर अ ग्रेट,
तो मुझे ऐसा लगता है कि अनीता आनंद साहिबा जाहिर है फॉरेन मिनिस्टर है हमारी,
ये बहुत टफ है,
तो अब मुझे लगता है अनीता आनंद साहिबा भी दो चार तारीफें कर देनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप साहब की,
बहुत टफ है इनके लिए, बहुत,
और
क्योंकि ये इनकी पहली असाइनमेंट है ना जो फॉरेन मिनिस्टर, और अगर यूएस जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है उसके साथ ही अगर ट्रेड ना चली, इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री पे जो है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री पे क्वेश्चन हो जाएंगे,
मुश्किल हो जाएगा, लेकिन देखिए अब यूरोप के साथ तो बना रहे हैं चीजें, बेहतर कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन के साथ,
लेकिन जो फ्रंट है वो कर्नी साहब का ही है, आप इसको देखें कि ये थोड़े से पीछे ही है,
फ्रंट जो है वो कर्नी साहब
का, जितनी मुलाकातें अभी हुई हैं
वो खुद कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं, बिल्कुल खुद कर रहे हैं, तो भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी आप खुद बात कर लें, मुझे लगता है वीकेंड पर बातचीत हो जाएगी, लेकिन डोनाल्ड
ये फोन करेंगे और बताएंगे कि ये मेरी गवर्नमेंट
नहीं
है, कहाँ चला रहा है
डोनाल्ड ट्रंप साहब का प्रॉब्लम, शायद ये एक तो उनके नंबर्स कभी भी सही नहीं रहे, वो अभी भी अभी आपने देखा कल भी जो है वो पावल साहब के ऊपर बहुत गुस्से में कि हम दुनिया का हाई इंटरेस्ट जो है वो कह रहे हैं, अगर ये अपना एक साइन कर दे तो हम जो है वो ट्रिलियन डॉलर जो है वो इंटरेस्ट में हम सेव कर लेंगे। दूसरी तरफ पावल साहब जो है वो कहते हैं नहीं भाई, हमारी इकॉनमी श्रिंक कर रही है, हमारे जो है मसले मसाइल हो रहे हैं, आप जो है वो डीले बोल तो रहे लेकिन वो डील फिजिकली सिवाय यूके से अब तक कोई फिजिकली सामने नहीं आई है।
जैसे इंडिया पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि कश्मीर के ऊपर हजार साल से लड़ रहे हैं ये।
हाँ, हजार साल
से दे आर फाइटिंग ऑन द इशू फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स।
मतलब वो आई डोंट नो किस दुनिया में, आई डोंट नो ट्रूली स्पीकिंग, सम टाइम बड़ा मुश्किल लगता है ऐसे आदमी के साथ डील करना। और ये अगले चार साल कैसे जाएंगे,
मुश्किल जाएंगे
मुझे लगता है कि कनाडा के लिए, खासकर एज अ कैनेडियन मैं कहता हूं कि
हमें
जल्द से जल्द, मैं कहता हूं कारनी साहब अगर जरा से भी विजन रखते हैं तो मुझे लगता है कि इन्हें अपने दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स बनाने पड़ेंगे, अपनी अमेरिका के कहने पर जो हमने दुश्मनियां बना ली थी। और एक जो ये हमारा है ना कि यार हम वर्ल्ड चैंपियन हैं ह्यूमैनिटी के और वो इंसानियत के और फलां करने के भजन, इसको भी थोड़ा सा ना जरूरी है। आप इंसानियत सबसे पहले
वो तो कट जाएगा सारा ये, लेकिन आप कट जाएगा वो 100 बिलियन जो आपने वो बनाने हैं ना उसके 5%
जो डिफेंस नेटो
ये सारे ये, क्योंकि उन्होंने खुद ही कह दिया करणी साहब ने कि हमें बहुत सारी अब चीजों पर कट करने
नहीं, फिर हम उस चक्कर में जैसे हम चाइना से बात नहीं करते, वो कहते हैं जी यहां के जो है मसले वो ज्यादा करते हैं, उनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उनके ये मसले हैं और ह्यूमन राइट्स के वहां पर मसले हैं। यार आप ट्रेड से का काम रखें, फिर रशिया को कहते हैं जी आप जो हैं वो तो वो डिक्टेटर हैं, डिक्टेटर हैं और आपने जो है वो डिक्टेटरशिप चलाई हुई, आपने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। यार आप
ये चीजें फायर बैक करती हैं,
आप देखें ना आपने कुछ भी देखें, इंडिया के साथ कितना क्लैश रहा है अभी, उसके बावजूद आपने उनको इन्वाइट किया। आपको नजर आ रहा है ना कि एक बड़ी ट्रेडिंग कंपनी, मतलब कंट्री है, चलो कंपनी में कहना माजर, एक कमर्शियल इंटरेस्ट है ना आपका, एक बहुत बड़ा कंट्री है जहां आपका ट्रेडिंग इंटरेस्ट है उसके साथ, तो आपने इतने प्रोटेस्ट के बावजूद इतना नेगेटिव यहां पर जो चीजें चल रही थी, और आपको मालूम है आपने खुद खड़े होकर आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है सिंह साहब के कत्ल में, तो उसके बावजूद आपने इनवाइट किया ना, तो क्या आप इनवाइट जो है वो चाइना को और रशिया को नहीं कर सकते?
नहीं, चाइना तो है लेकिन रशिया जो है उसको तो निकाल दिया था ना इन लोगों
ने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहला सवाल जब हैप्पी बर्थडे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको हैप्पी बर्थडे और फला फला मुबारकबाद दी, उन्होंने कल्ली बल्ली किया, उन्होंने कहा पहला जवाब जो दिया कि आपने जो है वो ज्यादती की, आपने ज्यादती की उसके साथ निकाल के, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक कि आपने उसको G8 को जो है G7 किया। तो इन चीजों को मुझे लगता है कि एज अ गवर्नमेंट सोचना पड़ेगा, वरना मुझे देखो कनाडा तन्हा होता जा रहा है अभी लग रहा है, यूरोपीय यूनियन से आप कितना ट्रेड कर लेंगे, वो खुद अपनी मुश्किल
है,
वो खुद उसके चाइना के और रशिया के रहमो करम के ऊपर है, गैस बंद कर दे उनकी, कल को खुदा ना खासा कुछ मसाइल हो जाए चाइना के साथ, उनकी जो है ट्रेडिंग पार्टनर जो है कितना जो है वहां से ट्रेड करते हैं, तो क्या यूरोपीय यूनियन चाइना से ट्रेड नहीं करता?
करता है, बिल्कुल करता है, अपने इंटरेस्ट है उनके, बिल्कुल करते हैं वो।
तो हमें क्या मतलब बुखार हुआ है हमें कि नहीं जी, अब तो खत्म हो गया ना, अब देखिए अब वो पास्ट इज पास्ट, आज खड़े होकर कारनी साहब इस चीज को ऐलान करेंगे जी हम जहां हमारे म्यूचुअल बेनिफिट्स हो सकते हैं, चाहे चाइना के साथ हो, रशिया के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, तुर्की के साथ हो, दुनिया
पाकिस्तान के साथ भी बनाना चाहिए, पाकिस्तान से इनको बहुत कुछ मिल सकता है
दुनिया इस वक्त। डोनाल्ड ट्रंप साहब तक जो है वो कह रहे हैं कि जी हमने ट्रेड करना है पाकिस्तान के साथ,
जो है वो कर रही है और इन ये सो रहे हैं बिल्कुल, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के पास इस वक्त कितना कुछ इनको ऑफर करने के लिए, लेकिन हमारे एमपीज भी सो रहे हैं ना, हमारे एमपी
देखिए कहीं नजर नहीं आ रहे, कोई भी आप देखें कोई बयान नहीं आ रहा,
कुर्सी अपनी,
मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होता ना कि साइलेंट मोड नजर आ रहा है समहाउ, आई डोंट नो,
बस अपनी कुर्सियां संभाल के बैठे,
कोई कोई इस चीज पर सामने नहीं आ रहा, कोई कोई
नहीं, नहीं कह रहा कि आउट ट्रेड मिशन एक हाँ, पाकिस्तान लेकर,
तो पॉलिसी नजर नहीं आ रही हाँ, सामने अब तक खुल के, कोई मुझे नहीं लगता कि कनाडा की एक्सेप्ट क्या पॉलिसी है कि उसने दुनिया से कैसे इस टैरिफ से लड़ना है, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब लगाए जा रहे हैं आज भी देखें ना, ये रोज ही हो रहा है तकरीबन, हर 15 दिन 20 दिन के अंदर कोई एक मैसेज आ जाता है,
छोटा बिजनेसमैन है वो तो मरता जा रहा है ना,
वो उनका जीना मुश्किल हो गया, यहां लोगों के पास जॉब्स नहीं है, महंगे सिर्फ आए देखें गैस प्राइसेस नीचे, लास्ट टाइम में जो 1.7 इन्होंने नंबर्स दिए उस पर मेजर रोल नीचे आने का
गैस प्राइस आएगी,
कल को ये गैस प्राइसेस ऊपर गई आपका बुरा हाल हो जाएगा,
फिर चीजें महंगी,
आपका बुरा हाल हो जाएगा, आपका बुरा हाल हो जाएगा, आपको इस चीज को समझना चाहिए, सिर्फ रिलाय आप ना करें इसके ऊपर कि भाई गैस की प्राइस नीचे आ गई तो हमारे 1.7 आ गया, तो बहरहाल देखते हैं, हम कनाडा के लिए हमेशा दुआ ही करते हैं, हमारा कंट्री है, हमारा मुल्क है, इसके लिए कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान पे दिल जान कुर्बान तो कनाडा के लिए भी दिल जान कुर्बान। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ और खबरों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, अगर आपने लाइव खबरें सुननी है, हमारे स्पॉन्सर्स को कोई नंबर्स लेने हैं तो आप हमारी वेबसाइट eawaz.com जा सकते हैं, यहां पर आप अब अंग्रेजी उर्दू और पश्तो जबान में हमारा जो है वो न्यूज़पेपर आपको eawaz.com पर मिल जाएगा। और अगर आप कोई स्पॉन्सर्स करना चाहते हैं तो जनाब आप आरफा मुजफ्फर साहिबा को कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर आप सबके पास है, तो आप हमें स्पॉन्सर्स करके भी हमारे साथ जो है वो ताउन करें। अगर आपका कोई भी बिजनेस है, रेस्टोरेंट है या कोई आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो जरूर हमें 770 एएम पर और ई आवाज टीवी को मौका दें कि हम आपकी जो बिजनेस को में ग्रो करने में अपना भी रोल अदा कर सके अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। चले जनाब गर्मा गर्म खबरों की तरफ पढ़ते हैं, शाजिया मलिक की तरफ।
जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी। राजा बादशाह आपको पता ही है कि बहुत ही जबरदस्त आपको डील्स देते हैं, दो गाड़ियां और एक घर है आपके पास, तो इनको कॉल कर लें। ऑल स्टेट के साथ होते हैं और डिस्कस जरूर एटलीस्ट कर लें। अगर आपको जो है अभी आप श्योर नहीं है कि आपको यू हैव टू यू वांट टू गो हेड विद हिम, तो आप कॉल जरूर उनको एक जो है बार करें। उनका नंबर है 6472903773। अच्छे कपड़े आपको लेने हैं, स्पीयर एंड मके पे जाए। स्पीयर एंड मके जो है वो अब ब्रिटानिया रोड पे आ गया, 775 ब्रिटानिया रोड वेस्ट। इनका नंबर है 9056703388। मर्दों के बहुत अच्छे इटालियन फैब्रिक के कपड़े हैं। और जनाब आपके दांत खराब हो गए हैं तो आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर नाजिया रहमान के पास। डॉक्टर नाजिया रहमान के तीन डेंटिस्ट्री अब क्लिनिक्स है, तो आप उनमें से किसी पे भी जा सकते हैं, दो ब्रैम्पटन एक मिसेस आगा में। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं @9058721100। आपको अब वीकेंड है, अच्छा खाना खाना है, तो नाजर चट्टाज आपके पास, विलेज टेस्ट में जाएं। विलेज टेस्ट के भी दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसेस आगा और एक ओकविल में। आप बैठ के भी खा सकते हैं, टेक अवे भी कर सकते हैं, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं @6477744888। और जनाब अगर आपको जो है वो अच्छे अप्लायंसेस चाहिए और बहुत कम प्राइस पे चाहिए कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट, तो फिर आप 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट पे जाओ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे। वहां पे सुल्तान भाई होते हैं, सुल्तान भाई का नंबर है 9054502828। अगर आप चाहते हैं आपके ट्रक का हेल्थ अच्छा रहे तो QTL क्विक ट्रक ल्यूब पे जाओ, और वहां पे खासतौर पे जो उनका नैपनी का लोकेशन है वहां पे बहुत जबरदस्त, वहां पे उनके पास मैकेनिक्स है, ऑयल्स है, तो आपके जो भी समस्याएं हैं आपके ट्रक की वो ठीक कर देते हैं। इनका नंबर है 1519622060। और अगर आपकी फैमिली में कोई इवेंट आ गया है तो फिर आप कॉल कर सकते हैं हमारे असलम भाई को पायल ज्वेलर्स पे। तो पायल ज्वेलर्स पे वो कहते हैं दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान से बहुत जबरदस्त हम ज्वेलरी लेकर आए हैं। 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव ब्रैम्पटन के अंदर है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं 9057907879। ठीक है जी, तो अब हम अपनी खबरों की तरफ चलते हैं। ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने आज अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि यूएसए इमीडिएटली एंड कर रहा है ट्रेडिंग टॉक्स विद कनाडा ड्यू टू कनाडाज डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन टेक कंपनीज, जो कि ज्यादातर अमेरिकन है। और उन्होंने कहा कि ये डायरेक्ट और ब्लेटेंट अटैक है ऑन यूएस। उन्होंने कहा जी कि कनाडा को पता होना चाहिए कि जो हम टैरिफ सब लगाएंगे और हम इनके साथ बात करेंगे इन द नेक्स्ट 7 डेज, और हम इनको बताएंगे कि हमने इनके साथ अब कैसे बिजनेस करना है। इसके साथ जैसे ही ये न्यूज आज आई है तो कॉर्नी साहब ने एक क्लोज टू मीडिया मीटिंग जो है वो मेंबर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन कनाडा यूएस टाइज जो है उनके साथ होल्ड किया। अब उस मीटिंग में क्यों हुआ, क्या हुआ होया है, क्या डिस्कस किया वो मालूम नहीं है, क्योंकि वही जैसे मैंने आपको कहा क्लोज टू मीडिया ये मीटिंग थी, तो पता नहीं चल सका है, कोई न्यूज अभी बाहर नहीं आई है उन्होंने क्या बात की है। लिबरल्स जो है उन्होंने 3% टैक्स लगाया था 2021 में, अपने बजट में उन्होंने अनाउंस किया था, ऑन रेवेन्यूज ऑफ ओवर $20 million फ्रॉम टेक जायंट्स अर्निंग मनी ऑफ कनेडियन कंटेंट। और उस वक्त की जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी बाइडन की, उसने भी इसको बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी बोला था, तो उसकी वजह से जो है चीजें जरा वही है कि वो ट्रंप साहब बीच बीच में से चीजें पकड़ लेते हैं ना, तो बस उन्होंने एक ये पकड़ लिया है, तो अब वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। कार्नी साहब जो है उनका जो पॉइंट पर्सन है इन सेनेट, वो सोचते हैं कि हम पास कर लेंगे स्विफ्ट पैसेज ऑफ लैंडमार्क नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बिल। और वो कहते हैं जी कि ये अब सेनेट में ये जाएगा। ये कॉर्नी साहब ने ये कहा था कि हमको ये इमीडिएटली ये C5 बिल जो जिसका कि हम जिक्र कल भी आपके साथ कर रहे थे कि वो चाहते थे कि ये इमीडिएटली पास कर ले, जो कि पास हो गया है हाउस ऑफ कॉमन्स में क्योंकि वहां पे इनकी मेजोरिटी है, लेकिन सेनेट में ये फंस गया है। अब इनके जो बहुत ही क्लोज एलाय हैं जो चाहते हैं कि समर ब्रेक से पहले ये बिल जो है उसको किया जाए, सेनेटर मार्क गोल्ड, उन्होंने कहा है जी कि हम चाहते हैं कि ये C5 जो है ये रेड चेम्बर जिसको सेनेट बोलते हैं उससे ये पास हो जाए, और ताकि कॉर्नी साहब का जो कमिटमेंट था इलेक्शन ट्रेल में कि हम वी आर गोइंग टू बिल्ड बिग बिल्ड बोल्ड, तो सेनेटर जो अब इसके ऊपर बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमको इंडिजिनस जो लीडर्स है और एनवायरमेंटलिस्ट है उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनके बहुत सारे जो है इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं। और पॉल प्रॉस्पर जो हैं मिकवा सेनेटर हैं फ्रॉम नोविया स्कोशिया, वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, क्योंकि इंडिजिनस लोग जो है उनका बहुत ज्यादा इसके ऊपर कंसर्न है कि उनकी लैंड के ऊपर ये आप बिग प्रोजेक्ट अगर बनाएंगे तो एनवायरमेंटलिस्ट और उनकी जो रजामंदी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये अब सेनेट से पास होएगा या नहीं, ये एक बिग इफ है, तो उसके ऊपर जो है जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे। अच्छा जनाब, अफसोस की बात यह है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसको बताया गया है कि आइस जो है उसकी कस्टडी में एक कैनेडियन सिटीजन जो है उसकी डेथ हो गई है, और अर्जेंटली कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो सीख कर रही है कि वो यूएस ऑफिशियल्स जो है उनके साथ बात कर रही है। ये जो आइस ने पकड़ा था, आइस की अपनी पीआर कह रही है कि जॉनी नोवेलो जो है 49 इयर्स उनकी एज है, वो आइस की कस्टडी में थे और वो जो है उनको फिर प्रोनाउंस किया गया था डेड बाय मायामी फायर रेस्क्यू डिपार्टमेंट, और कॉज ऑफ डेथ जो है वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसके ऊपर बात करते हुए फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर अनीता आनंद ने कहा कि हां, अमेरिकन गवर्नमेंट ने हमको नोटिफाई किया था और उन्होंने बड़े कंडोलेंसेस जो हैं वो ऑफर किए हैं उनकी फैमिली को, लेकिन प्रिवेसी के लिए उन्होंने कहा जी कि और फर्दर डिटेल्स इसके ऊपर नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जो है एक और कैनेडियन जो टूरिस्ट है उसकी डेथ हो गई है डोमिनिक रिपब्लिक के अंदर, उसका नाम डोरियन क्रिश्चियन मैकडॉनल्ड था, 33 इयर्स एज थी और एक होटल में थे प्रूटो प्लेटा के अंदर और वॉक कर रहे थे उस पे बीच पे और गायब हो गए थे, और उसके बाद फिर जो पुलिस है वहां की उसको जो है बॉडी मिली थी। वही अब जो ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा है जिनको हेड करती हैं अनीता आनंद साहिबा, उन्होंने अब कहा है कि हमको इसके बारे में भी पता है लेकिन प्राइवेसी के लिए हम इसके भी ज्यादा डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। इसके साथ साथ ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने कहा है, और अनीता आनंद साहिबा से ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि भई ये जो लोग फंस गए हैं इसराइल ईरान और वेस्ट बैंक में, उन कैनेडियंस को आप कैसे निकालेंगे, तो आज ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने कहा है कि 800 कैनेडियंस और परमानेंट रेजिडेंट्स और एलिजिबल फैमिली मेंबर्स जो हैं वो निकल गए हैं इसराइल ईरान और वेस्ट बैंक से। और गैक ने कहा कि जी हम गैक यानी कि ग्लोबल अफेयर्स कनाडा, उसने कहा जी कि हम काउंसलर सर्विसेज इनको दे रहे हैं और इनको कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड सेफ प्लेस पे जाए, और हम ट्रांसपोर्टेशन भी इनको ऑफर कर रहे हैं और ये जॉर्डन में ज्यादातर लोग जा रहे हैं और वहां से फिर ये लोग वापस यहां पे आ सकते हैं। लेकिन बात वही है कि ग्लोबल अफेयर्स कनाडा बेचारा कहता रहता है, बहुत अरसा पहले से कहता रहता है कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाली जगह है उसमें आप ना जाओ और वापस आ जाओ, फिर भी ये लोग जाते हैं। जैसे कि हॉकी टीम जो थी वो इसराइल पहुंच गई थी, अब इसराइल में तो कब से लड़ाई चल रहा है ना जी, तो आप क्यों जा रहे हैं वहां पे, तो बस वो फिर फंस जाते हैं और फिर जो है कैनेडियन गवर्नमेंट को कहते जी हमें निकालो हमें निकालो। तो जरा थोड़ा सा ग्लोबल अफेयर्स कनाडा भी ये कहता है कि आप जरा हमारा वेबसाइट देख लिया करो इन किसी भी कंट्री में ये जो है इसमें जाने से पहले। ऑन्टेरियो के एजुकेशन मिनिस्टर हैं जी पॉल क्लैंट्रा, उन्होंने कहा है जी कि ऑन्टेरियो अब कंट्रोल करेगा 4 स्कूल बोर्ड्स को, इंक्लूडिंग ट्रोनो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड, ट्रोनो कैथोलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड, क्योंकि जब इनके ऊपर कुछ अर्सा पहले जब हमने को बताया था कि इनके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन डाली थी तो पता चला था कि फाइनेंसिस को बहुत मिसमैनेज कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही एक ट्रिप लिया था इटली में और वहां से कुछ आर्ट पीसेस खरीदे थे, तो बहुत उस तरह से पैसे इन्होंने जाया किए थे, फिर वहां पे बड़े बड़े होटल्स में रहे, खाया पिया घूमा फिरा, तो ऐसे करके इन्होंने कहा जी कि बोर्ड जिसमें कि इंक्लूडेड है ओटावा कॉल्टन डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड डफरिन पील कैथोलिक स्कूल बोर्ड, ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को नहीं दे पाए हैं, हालांकि इनका काम ये होता है कि स्टूडेंट को की सक्सेस जो है इसको इंश्योर करे। तो जब तक ये पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का जो है वो ट्रस्ट नहीं ले लेते हैं उस वक्त तक हम इसको ओवरसी करेंगे। बहुत सारे सुपरवाइजर्स जो है उनको इन बोर्ड्स के ऊपर लगाया गया है ताकि ये मिस स्पेंडिंग जो कर रहे हैं इसको रोका जा सके, और वो कह रहे हैं जी कि ये डॉलर्स किधर स्पेंड कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए होना चाहिए तो आप किधर कर रहे हो। तो जिस वक्त तक ये मैंडेट पूरा नहीं करेंगे वो कहते हैं जी मैंने पहले ही क्लैरिफाई किया था मैं एक्शन लूंगा। और इसके साथ साथ ऑन्टेरियो ने हॉल्ट कर दिया है जो प्लान ला रहे थे, जो आज बताया फिर से क्लैंट्रा साहब ने कि ये एक लेकर आ रहे थे स्कूल करिकुलम चेंजेस जो कि सितंबर से इंट्रोड्यूस अभी करना था इन रीडिंग मैथ्स एंड स्टीम लेसन्स फ्रॉम केजी ऑनवर्ड्स। उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर एक नेसेसरी रिव्यू बिठाना जरूरी है और इसलिए हम इसको डेफर कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि टीचर्स भी जो है इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें। एज अ रिजल्ट ये जो अब नए चेंजेस हैं ऑन्टेरियो के करिकुलम में ये 2026-27 स्कूल ईयर में इंप्लीमेंट किए जाएंगे। ऑन्टेरियो जो है जी वो अब एक्सपैंड कर रहा है प्राइवेटली फंडेड कम्युनिटी सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। प्रीमियर डकफोर्ड जो है उन्होंने कहा जी कि ऑन्टेरियो इन्वेस्ट कर रहा है 155 मिलियन इन द नेक्स्ट टू इयर्स टू क्रिएट 57 न्यू सेंटर्स फॉर एमआरआई एंड सीटी स्कैन्स एंड गैस्ट्रो टेस्टिनल एंडोस्कोपी सर्विसेज। उन्होंने कहा जी कि ये जो नए क्लिनिक्स हैं ये हॉस्पिटल्स का जो वेट टाइम और बर्डन है उसको कम करेंगे। उन्होंने कहा जी कि 35 न्यू सेंटर्स एमआरआई और सीटी स्कैन्स के सर्व करेंगे 800,000 पेशेंट्स को और 22 जो हैं वो एंडोस्कोपी सर्विसेज देंगे। पीसी गवर्नमेंट जो थी उसने ये पहले स्वीपिंग चेंजेस जो थे हेल्थ केयर में इन 2023 अनाउंस किए थे और इसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर मचा था कि आप प्राइवेट क्लिनिक्स को ये क्यों दे रहे हैं, लेकिन पीसी गवर्नमेंट ने कहा कि ये मैसिव सर्जिकल और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो बैकलॉग है इसको खत्म करने के लिए ये जरूरी है। आज जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग भी हम आपके साथ स्टोरी करते हैं। इससे पहले तो आपको पता था कि ये कनेडियन प्लेस जो है ये टॉलेस्ट जो है टावर था इसमें कैनेडा में 298 मीटर्स इसकी हाइट थी। आज एक 85 स्टोरी मेगा टावर जो है एट वन ब्लू वेस्ट जो है उसको अब ऑफिशियली कनाडाज टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो कहा जा रहा है और ये जो 50 इयर्स का जो मार्क था इनका इसका इस कनाडा प्लेस का वो अब जो कैनेडियन प्लेस का ये अब खत्म हो गया है। और ये जो टोरंटो का स्काई स्क्रेपर सीन जो है इसने काफी चेंज कर दिया, जस्ट शिफ्टिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट टू न्यू लीनियर कोर अलोंग स्पाइन ऑफ योंग स्ट्रीट। तो ये अब नया जनाब टॉलेस्ट टावर जो है वो आ रहा है, इसका नाम है ये आ रहा है एट वन ब्लू वेस्ट के ऊपर। अच्छा जनाब, अथॉरिटीज इन ईरान जो है हॉर्मुज़गान का जो एरिया है वहां से फिर आज उन्होंने दो स्पाइज को पकड़ा है जो कि स्पाइंग कर रहे थे 12 डे कॉन्फ्लिक्ट और मे भी उससे पहले भी इसराइल के लिए। और वो कहते हैं जी कि ये स्पाइंग जो थे ये उसके लिए कर रहे हैं जो मुल्क के खिलाफ जो है वो कर रहे हैं। पुलिस स्पोक्सपर्सन जो है उसने कहा कि ये सस्पेक्ट जो है इनको डिटेन किया था हॉर्मुज़गान के जो इंटेलिजेंस अथॉरिटीज है और ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे सारी मुल्क के अंदर की फॉरेन एंटिटीज को और इसमें बहुत सारे मेल और फीमेल सस्पेक्ट्स थे और वो कहते हैं जी उनके पास से बेशुमार पैसा जो है उनको दिया जाता था जो हमें पता चला है। और ये तो वैसे तो शो करते थे कि हम सैटेलाइट्स और फोन्स को रिपेयर करते हैं और कॉस्मेटिक्स इम्पोर्ट कर रहे हैं, मगर उसके चक्कर में ये बहुत सारा टेलीकॉम इक्विपमेंट सैटेलाइट फोन्स जीपीएस जो थे वो ये लाते थे और फिर उसकी वजह से ये सारी इन्फॉर्मेशन देते थे। इससे पहले एक दिन पहले भी ईरान ने एग्जीक्यूट किया है 3 लोगों को, यानी कि यस्टरडे इन्होंने एग्जीक्यूट किया 3 लोगों को, इनको भी कन्विक्ट किया गया था कि ये मोसाद के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे और इक्विपमेंट जो है वो स्मगल कर रहे थे। ये जो बहुत हाई लेवल असैसिनेशन हुए थे उस सिलसिले की हेड ऑफ इरानियन जुडिशरी जो है गुलाम हुसैन मोहसिनी एजाई उन्होंने आज कहा है कि इमीडिएटली ये जो इन लोगों को एक खिलाफ सेंटेंसिंग की जाए और एज सून एज पॉसिबल है इनको जो है सजाए दिए जाए क्योंकि ये मुल्क के गद्दार है। आपको पता ही है कि टॉप साइंटिस्ट और जो जनरल्स थे उनके एग्जैक्ट ठिकाने बताए थे कि किस बिल्डिंग में वो बैठे हुए हैं और फिर मोसाद ने और इसराइल ने अलेजली उनके ऊपर अटैक्स किए थे और फिर उन लोगों के डेथ्स हुए थे। तो आज अब बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस शुरू हो गई, तो क्रैकडाउन अब इंटेलिजेंस एजेंसी, पहले तो वो चुप करके बैठे थे ना, तो अभी क्रैकडाउन जब शुरू किया तो लोग पकड़ रहे हैं वो लोग। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर जो है जी इसराइल कैट्स उन्होंने कहा जी कि हम तो ये जो 12 दिन का वॉर था इसके अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को हम मारना चाहते थे और हमको इसके लिए यूएस का कुछ परमिशन जो है वो नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको पता ही है कि ट्रंप साहब की तरफ से आया था कि हमने वीटो किया था कि ये जो आयतुल्ला अली खामनाई हैं इनको बिल्कुल असैसिनेट नहीं करना है आपकी जो जंग हो रही है ईरान के साथ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमको कुछ जरूरत नहीं था परमिशन का और हम तो इसको फाइंड आउट कर रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है इनके स्पाइस जो थे वो इधर फैले हुए थे सारे। वो कहते हैं जी हम तो इनको ढूंढ रहे थे लेकिन हम इनको ढूंढ नहीं पाए थे। और उन्होंने कहा जी कि खामनाई को पता था कि उसकी लाइफ के ऊपर जो है वो हमला हो सकता है, इसीलिए वो अंडरग्राउंड चला गया था और उसने अपने तमाम कॉन्टेक्ट कमांडर्स के साथ जो है खत्म कर दिए थे, लेकिन ये भी एक झूठ है। उसकी वजह यह है कि आयतुल्ला अली खामनाई के जो वीडियोज है वो तो जंग के दौरान कॉन्स्टेंटली आते रहे और उसमें कोई भी एविडेंस नहीं नजर आ रहा था कि वो अपने जनरल्स या मिलिटरी या जो दूसरे डिसीजन मेकर्स है उसके साथ कोई उनके कॉन्टेक्ट नहीं है। और लेकिन आपको पता ही है कि नतन्याहू और ट्रंप साहब ने बहुत दफा ये बोला है वॉर के बीच में कि अगर वॉर के नतीजे में एक रजीम चेंज आता है तो वो आ सकता है, और जो इन्होंने अपना जो ऑपरेशन का नाम भी रखा था राइजिंग लायन, जो जिसकी मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी कि राइजिंग लायन जो था वो शाह के जमाने में झंडे के बीच में था, जिसको कि जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था तो फिर उन्होंने उसको अल्लाह के नाम से जो है फिर रिप्लेस किया था, तो वो इसीलिए चाहते थे, इसका मकसद ही यह था कि रजीम चेंज यहां पर लाई जाए, यानी कि रजा शाह पहलवी के जो बेटे हैं उनको लाया जाए और वैसे ही राइजिंग लायन जो है वो वापस आ जाए, तो उसके लिए तो ट्रंप साहब और नतन्याहू साहब ने यह बड़ी दफा बात कही है कि अगर रिजीम चेंज आता है जंग के सिलसिले में तो आ सकता है, हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर ट्रंप साहब ने जिस वक्त प्यार मोहब्बत बढ़ गया, दोस्ती होगी, तो उन्होंने कहा कि वी वांट टू मेक ईरान ग्रेट अगेन, तो बस मिली जुली बातें जो है वो करते रहते हैं। आज ट्रंप साहब जो हैं जी उन्होंने इसराइल को बोला है कि ये नतन्याहू साहब के खिलाफ जो आप करप्शन के केसेस चला रहे हो इसको आप खत्म करो और इसको पार्डन ग्रांट करो, और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल विच हंट है, यानी कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है वो इसके खिलाफ जो है वो ये सारे केसेस है, यानी आप कैसे कह सकते हैं इसराइल की जुडिशरी कह रही है कि ये करप्शन में इन्वॉल्व थे। नतन्याहू साहब जो इनको इंडाइट किया गया था 2019 में ऑन चार्जेस ऑफ ब्राइबरी फ्रॉड एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आज इन्होंने ट्रूथ सोशल पे ट्रंप साहब ने लिखा कि ये एक ग्रेट हीरो है, इसने स्टेट ऑफ इसराइल के लिए बहुत कुछ किया है, तो इसको या तो आप पार्डन करो और ये केसेस जो है इसके ऊपर से खत्म करो। नतन्याहू का जो ट्रायल था वो 2020 में शुरू होया था और उसके ऊपर 3 क्रिमिनल केसेस है, ये सारे जो एलिगेशंस हैं इनके ऊपर उसको वो डिनाय करते हैं और इन्होंने प्लीड किया था नॉट गिल्टी आल्सो। इनका जो अभी June 3 को क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होया था एक तेल अवीव की कोर्ट में, तो वो कहते हैं जी कि वो अभी चलेगा 1 साल तक और, तो आप सोच सकते हैं कि फिर भाई साहब जो है 1 साल अभी और जो है वो मारेंगे उनको पैलेस्टीनियंस को। इजरायली प्रेसिडेंट जो है आइजक हर्ज़ोग वो इनको पार्डन दे सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी कि इस तरह की कोई भी बातचीत जो है अभी ऑन द टेबल नहीं है, तो यानी कि वो इस मूड में नहीं है कि इनको पार्डन किया जाए। ट्रंप साहब जो है एक इवेंट पे व्हाइट हाउस में बात कर रहे थे एंड दिस इज बिग ब्रेकिंग न्यूज, दिस इज बिग बिग ब्रेकिंग न्यूज। व्हाइट हाउस में आज ट्रंप साहब ने कहा है कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो गया है एंड वी आर एंडिंग द ट्रेड वॉर। व्हाइट हाउस के ऑफिशियल जो है उन्होंने भी कन्फर्म किया है कि दोनों के बीच में एडिशनल अंडरस्टैंडिंग जो है उसका फ्रेमवर्क जो उस पर काम हो रहा है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि जो जिनीवा के अंदर अग्रीमेंट हुआ था उसके बाद, और उन्होंने कहा जी कि जो स्विस कैपिटल में लास्ट ईयर बातचीत हुई थी उसमें दोनों ने एग्री किया था कि हम ट्रेड ट्रूस लाएंगे, यानी कि ट्रूस वॉर में होती है लेकिन चूंकि ट्रेड वॉर चल गई थी तो उसके अंदर उन्होंने वर्ड यूज किया ट्रूस हम लाएंगे। उन्होंने कहा जी कि अब ये जो है यूएस के साथ ये लोग मान गए हैं कि ये रेयर अर्थ जो मटेरियल्स है उनको शिप करेंगे यूएस में वंस अगेन, और जिनीवा के अंदर दोनों ने ये कहा था कि जो मैसिव टैरिफ्स है इसको 90 डेज के लिए हम रोकेंगे ताकि ब्रॉडर ट्रेड टॉक्स जो है वो हो सके। इसके बाद जो इन दोनों की मुलाकातें लंदन में भी हुई थी और उसके अंदर भी फ्रेमवर्क ऑफ टॉक्स एंड डील्स जो थे वो इन्होंने बातचीत की थी। सारे का जिक्र जो है ट्रंप साहब ने भी जो है वो जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि हम एक एग्रीमेंट जो है फॉर्मलाइज कर रहे हैं। यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है हॉवर्ड लुटनिक उन्होंने भी आज मीडिया को बताया कि ये डील अब साइन हो गई है, इनफैक्ट इट वाज साइंड एंड सील्ड 2 डेज बैक, और चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है उसने भी इन डिटेल्स को जो है वो कन्फर्म किया है, लेकिन उस पर उन्होंने कहा जी कि चाइना अभी रिव्यू करेगा और अप्रूव करेगा अंडर इट्स ओन लॉ, तो अगर उन्होंने अप्रूव किया तो फिर वी विल गो अहेड विद इट, जो कि मुझे लगता है कि शायद वो कर जाएंगे क्योंकि इतने तो जो है वो टैरिफ्स वो भी नहीं दे सकेंगे, बेशक वो रिड्यूस भी कर दिए 100% से फिर भी या 400% से कम भी कर दिए। आज एक जो चीज जिसकी लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की वो है पोप लियो 14, उन्होंने आज बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार किया है, उन्होंने कहा जी कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसको बिल्कुल जो है ग्लोबल पावर्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो नहीं यूज कर रही हैं एंड दे हैव फेल्ड टू एंड अब्यूजेस एंड वॉर क्राइम्स। उन्होंने कहा जी कि दिन ब दिन ये चीजें बढ़ती जा रही हैं और मैं बहुत डिसहार्टेंड हूं इस चीज को देख के आप लोग जो है दूसरे को ओवर पावर करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए इतनी ज्यादा जो है वो ब्रूटैलिटी दिखा रहे हैं। इट इज अनवर्दी एंड शेमफुल फॉर ह्यूमैनिटी एंड द लीडर्स ऑफ द नेशन, जाहिर है कि जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, नॉट एवरीबडी. उन्होंने कहा जी कि मैं प्लीड करता हूं आपसे, यानी मिन्नत करता हूं कि गाजा के अंदर वॉर को रोका जाए, इमीडिएटली सीज फायर किया जाए. वो कहते हैं गाजा में जो रोने की आवाजें हैं माओं की और बापों की, जब वो अपने बच्चों की लाइफलेस बॉडीज के साथ पकड़ पकड़ के उनको रो रहे हैं, वो बहुत ही अनबेयरेबल है, और इसको रोके. और जिनके के पास ना फूड है, ना वाटर है, ना शेल्टर है, उनके ऊपर आप कॉन्स्टेंटली बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, इसको इमीडिएटली रोके. तो एज इफ इजराइल केयर्स इवन फॉर द पोप, है ना, ऐसे है. अच्छा जनाब, ये देखें जहां पे के जो है वो लॉ काम करता है, आज ओस्लो के अंदर पुलिस ने चार्ज किया है मैरियस बॉर्ज हॉयबाय को, जो कि एल्डेस्ट सन है नॉर्वे के जो क्राउन प्रिंसेस है उसका, और इनके ऊपर जो है चार्जेस हैं ऑफ रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, बॉडीली हार्म, और इसके अंदर महीनों जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बिठाई थी, और फिर उसके बाद जो है बहुत सारे जो विक्टिम्स हैं उनसे बात करने के बाद फिर उन्होंने आज इनको चार्ज किया है, और उन्होंने अनाउंस किया है इन चार्जेस के बारे में. वो कहते हैं जी ये बहुत अरसे से अंडर स्क्रूटनी थे, क्योंकि रिपीटेडली इनको अरेस्ट किया जा रहा था सिंस 2024 अमिड एलिगेशन ऑफ रेप, प्रीलिमिनरी चार्जेस ऑफ बॉडीली हार्म, क्रिमिनल डैमेज, और हमें बहुत सारा एविडेंस जो है जमा करने में बहुत टाइम लग गया. वो एविडेंस जो है उन्होंने टेक्स्ट मैसेजेस से, विटनेस टेस्टिमोनी से, और जो पुलिस ने सर्चेस किए थे उस पे ये आए हैं. डिफेंस अटॉर्नी जो है इनके प्रिंस के, पीटर सैकुलिक, उन्होंने कहा कि हॉयबाय जो है वो बहुत इन एक्यूजेशन को सीरियसली ले रहा है, लेकिन वो एक्नॉलेज करता है कि उसने कोई भी रॉन्ग डूइंग इसके अंदर नहीं किया, स्पेशली इन द केसेस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एंड वायलेंस. नॉर्वे के अंदर जो ये जो रॉयल फैमिली है इसको बहुत ही मोहब्बत की निगाह से देखा जाता है, लोग बहुत प्यार करते हैं रॉयल फैमिली के साथ, लेकिन रॉयल फैमिली से जब मीडिया ने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कोई भी मीडिया को अभी जवाब नहीं दिया है, कोई रिस्पॉन्ड जो है इसके ऊपर नहीं किया है. इंडिया जो है जनाब, उसकी आज एक दफा फिर से जो है वो किरकिरी हुई है, और उसकी वजह यह है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसने जो देख रहा था ये इंडस वाटर ट्रीटी, उसने रूल किया है इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, और उसने रिजेक्ट किया है इंडिया का यूनिलैटरल अटेम्प्ट टू सस्पेंड ट्रीटी एंड होल्ड द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग. उन्होंने कहा जी कि ये ट्रीटी यूनिलैटरली सस्पेंड और टर्मिनेट कोई एक पार्टी नहीं कर सकती है. उन्होंने कहा कि इंडिया की कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है अंडर द ट्रीटी एंड अंडर इंटरनेशनल लॉ इसको डिसरप्ट करे प्रोसेस को और विदड्रॉ करे विदाउट म्यूचुअल कंसेंट. ये जो ट्रीटी है ये बोलता है कि दोनों की मर्जी से जो भी कोई चेंजेस होएगे वो होएगे यूनिलैटरली, कोई भी नहीं कर सकता. इससे पहले इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था सस्पेंशन इसके ऊपर ये ट्रीटी को, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि हम बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर डाल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान है ये वायलेट कर रहा है ट्रीटी को सिंस 2016. आर्बिट्रेशन कोर्ट ने कहा कि नहीं, आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और आप जो मीडिएटर का रोल है उसको भी अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, और ये जो डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन क्लॉज है इसको भी आप वायलेट नहीं कर सकते हैं. तो अनलेस एंड अंटिल पाकिस्तान आपके साथ अग्री करेगा तो आप ये उनका पानी नहीं रोक सकते हैं. तो ये जनाब जो है आज बात हुई. पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब जो है उन्होंने यंग ऑफिसर्स को कहा है कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म जो है उसको आप अपहोल्ड करें. आज प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की 52nd कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ सिविल सर्विसेज अकेडमी एट आर्मी ऑडिटोरियम इन रावलपिंडी जो है उसमें ये बात कर रहे थे. उन्होंने बहुत सारे क्रिटिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर बात किया, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस, और ये कि पाकिस्तान के जो आर्म फोर्सेज है वो रीजनल पीस और नेशनल स्टेबिलिटी कैसे रखे हुए हैं. उन्होंने कहा कि सब इंस्टीट्यूशंस को कोहिजन, रिस्पेक्ट और यूनिटी के साथ काम करने का जरूरत है. उन्होंने कहा इस इलाके का सबसे बड़ा जो टेररिस्ट है वो इंडिया है, और पाकिस्तान बिल्कुल इंडियन हेजेमनी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. आसिफ मुनीर ने कहा कि हम ना तो कभी हिंदुस्तान के आगे झुके थे और ना ही कभी झुकेंगे. ये टेररिज्म जो है इंडिया का इंटरनल मामला है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनके सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंट ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स के साथ किया जाता है, और पाकिस्तान की मिलिट्री फुली प्रिपेयर्ड है टू मीट द मॉडर्न वॉरफेयर नीड्स. और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मरका हक जो था उसने डिसाइसिवली जो इंडियन अग्रेशन था उसका जवाब दिया था. इसके साथ साथ आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो है उन्होंने भी आज अर्ज किया है जो मीडिया एक हडल हो रहा था उसमें कि रिफ्रेन करें कि पाकिस्तान मिलिट्री को पॉलिटिकल अफेयर्स में आप बिल्कुल ड्रैग मत करें। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मिलिट्री स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ बात करती है जिसको कि पॉलिटिकल कंसेंसस और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जाता है, और गवर्नमेंट जो इस वक्त की हो या किसी भी वक्त की हो वो स्टेट होती है और पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेट करता है अंडर द स्टेट, उसके ऊपर नहीं। उन्होंने कहा जी कि हम अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और हम सर्व करते हैं स्टेट को चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहे, और अगर आपको कोई ये बताने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान मिलिट्री पॉलिटिकल मैटर्स में इन्वॉल्व्ड है तो उनको बताओ कि हम बिल्कुल ए पॉलिटिकल स्टैंस रखते हैं। उन्होंने कहा जी कि ये पहले भी बहुत सारे र्यूमर्स और एजम्पशंस आ रहे थे पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ के हमारे जो है कोई पॉलिटिकल पर्पसेज है, हमारे कोई इस तरह के पॉलिटिकल पर्पसेज नहीं है, आर्मी जो है सिर्फ अपना काम करती है और बिल्कुल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने कहा आप हमेशा कहते हैं कि जी पाकिस्तान मिलिट्री ने क्या किया, आपने क्या ड्यूटीज दी, अभी जब मारका हक होया था तो आपने देखा नहीं है कि पाकिस्तान मिलिट्री पूरी तरह से फोकस थी अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और अपनी कमिटमेंट में जिसमें कि उन्होंने रीजन को, लोगों को और अपने मुल्क की सॉवरेनिटी जो है उसको बचाया और पाकिस्तानियों की प्रोटेक्शन में आगे रहे। तो ये जनाब बैक टू बैक जो है दो हमारे जो जनरल्स हैं उनकी ये आज वहां पे रावलपिंडी में बातचीत हुई है। ये पीटीआई जो है जी उसके लिए बड़ा ही लीगल सेटबैक आज हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आज ये अनाउंस कर दिया है कि जो रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन और माइनॉरिटीज इन नेशनल असेंबली इन द प्रोविंशियल असेंबलीज जो है उसके लिए पीटीआई बिल्कुल एंटाइटल्ड नहीं है। इन्होंने सारी की सारी पीटीआई की जो पिटीशंस हैं उनको रिजेक्ट कर दिया और ये डिसीजन अनाउंस किया 10 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान। उन्होंने कहा जी कि ये रूलिंग जो है जस्टिस शॉर्ट रूलिंग जो थी जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पढ़ते हुए कहा कि तमाम जस्टिसेस जो हैं जस्टिसेस अमीनुद्दीन खान खुद यानी के मुसर्रत हिलाली, नईम अख्तर अफगान, शाहिद बिलाल हसन, हाशिम खान काकड़, आमिर फारूक, अली बाकर नजफी सब ने ये रिव्यू किया है आपका जो है ये पिटीशन और इसको इम्पंच किया है मेजॉरिटी जो जजमेंट से। और उन्होंने कहा जी कि इसलिए जो है ये जो फाइल की थी एसआईसी यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो अपनी अपील सिविल अपील डाली थी उसको हम डिसमिस करते हैं और हम जो पिशावर हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको हम रेस्टोर करते हैं जिसमें कि उसने कहा था कि ये जो है रिजर्व सीट्स के ऊपर पीटीआई का कुछ भी हक नहीं है। वो कहते हैं जी हमने ये तमाम आपकी पिटीशन रिव्यू किए हैं और हम मेंटेन कर रहे हैं ओरिजिनल ऑर्डर को और इसीलिए हमने ईसीपी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर दिया है टू एग्जामिन एंड कंसिडर नॉमिनेशन पेपर्स एंड डिक्लेरेशन और अदर रेलिवेंट documents of all 80 returned candidates by means of noble exercise with regards to their affiliation. इस चीज का जो verdict का जो welcome है वो Prime Minister साहब ने किया है और जो लीगल टीम थी उसको बहुत ज्यादा जो है उन्होंने मुबारकबाद दी कि उसके हार्ड वर्क से ये सारा कुछ हुआ। उन्होंने कहा आज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड किया गया है जो कि ये इस वर्डिक्ट ने दिया है इन लाइन विद द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अब जाहिर है कि पीटीआई जो है वो इस फैसले को नहीं मानती है, वो कहते हैं जी एक दफा फिर से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था उसके ऊपर डाका मारा है, हमें पहले आप ही नहीं यानी कि कोर्ट की तरफ से ही ये हमारा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ये आपने हमारा राइट माना था और हमें स्पेशल सीट्स दिए थे और आज आप ही ने जो है इसको ओवरटर्न किया है विच इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये पीटीआई का कहना था। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जी आज वो हियरिंग रिव्यू कर रहा था ऑन प्ली इन रिजर्व सीट केस जिसको के डिसॉल्व किया था जस्टिस सलाहुद्दीन पन्हार ने और उन्होंने अपने आप को जो है वो रिक्यूज किया है इसमें से टू बी पार्ट ऑफ द बेंच क्योंकि एक लॉयर जो हैं हामिद खान साहब उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाला था। ये जो अभी जो है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी जिसको कि इंट्रोड्यूस किया था अक्टूबर में लास्ट ईयर उसमें कहा गया था कि नंबर ऑफ एपेक्स कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द केसेस और बहुत सारे दूसरे भी सिग्निफिकेंट चेंजेस जो थे वो पाकिस्तान की जुडिशरी सिस्टम में किए थे जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट जो ज्यूरिसडिक्शन थी वहां से ट्रांसफर किया था बहुत सारे जो है जजेस को। इसके ऊपर पीटीआई ने बहुत ज्यादा शोर मचाया था और इसको डिस्कस किया था SIC यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लॉयर ने लास्ट हियरिंग पे रिजर्व सीट के मैटर के ऊपर। पन्हार जो है उन्होंने कहा कि लॉयर हामिद खान ने चूंकि ऑब्जेक्ट किया है इस चीज पूरी के ऊपर और ये जो है वन ऑफ दोज जस्टिसेस हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि लोगों का ट्रस्ट रहे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एक भी पार्टी इसके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन डालती है कि ये बेंच जो है ये ठीक नहीं है तो मैं इससे अपने आप को दूर करता हूं। ऑफ कोर्स इसने मुझे हर्ट किया है लेकिन ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स का मामला नहीं है। चलो जी शुक्र है किसी एक दे विच ते इतनी इखलाकी जरूरत है। वेरी गुड। इंडिया ने आज डिपोर्ट किया है जी विदाउट एनी ट्रायल हंड्रेड्स ऑफ बांग्लादेशीज और उसकी वजह से ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा कॉन्डेमनेशन आया है फ्रॉम लॉयर्स फ्रॉम एक्टिविस्ट और उन्होंने इसको इलीगल कहा है और उन्होंने कहा जी कि ये एथनिक प्रोफाइलिंग आप कर रहे हैं। हिंदुस्तान का कहना है कि ये अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं और हमारे मुल्क में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इसलिए इनका यहां से जाना बहुत जरूरी है। मोदी गवर्नमेंट का जो हार्डलाइन स्टैंस है अगेंस्ट इमिग्रेशन खासतौर पे जो बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर आपको पता ही है कि हमारी दीदी जो ममता बैनर्जी है उसने भी काफी शोर मचाया था वेस्ट बंगाल में क्योंकि जाहिर है कि ये बंगाली ज्यादातर वहां पे भी जाके रहते हैं और जाहिर है उनके लिए तो वोट बैंक है ना भाई, तो इसलिए। लेकिन ममता बैनर्जी ने कहा था कि हम एथनिक बेसिस पे किसी के साथ वो नहीं कर सकते। टॉप ऑफिशियल्स जो है मोदी गवर्नमेंट के वो अक्सर इन लोगों को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं, इनको टर्माइट्स और इन्फिल्ट्रेटर्स यानी कि कीड़े मकोड़े इनको कहते हैं और कहते हैं ये घुसपैठिए है, तो इसलिए। हिंदुस्तान के बहुत जो एक्टिविस्ट है ह्यूमन राइट्स हर्ष मंदिर उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को पर्टिकुलरली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो है वो बहुत ज्यादा डराया धमकाया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को तो अब हिंदुस्तान के अंदर एग्जिस्टेंशियल फियर जो है वो आ गया है। इंडिया जो है वो अपना रैप अप कर रहा है माइग्रेंट्स के अगेंस्ट ये ऑपरेशन क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि ये जो पहलगाम के अंदर जो प्रॉब्लम आया था उसमें हम ये अब सिक्योरिटी क्रैकडाउन कर रहे हैं। राइट्स एक्टिविस्ट लॉयर्स ने बहुत ज्यादा आज क्रिटिसाइज किया इंडिया का ये ड्राइव और कहा इसको लॉलेस, खुद हिंदुस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। डेली बेस राइट्स लॉयर जो है संजय हेगड़े उन्होंने कहा कि ये जो लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है वो गलत है क्योंकि जब तक कोई दूसरा कंट्री जहां पे आप इनको डिपोर्ट करके भेज रहे हैं अगर वो इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं तो फिर ये लोग कहां जाएंगे, तो जो कि उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है। राहुल गांधी जी जो है उन्होंने आज फिर से जो है वो अलर्ज किया है बीजेपी को कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना चाहते हैं और उन्होंने कहा जी अपने एक्स के ऊपर कि ये जो RSS का मास्क था ये उतर गया है एक दफा से फिर और ये जो है वेरी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिलिबरेटली असॉल्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में से डिलिबरेटली वर्ड्स को निकाला जा रहा है इक्वालिटी सेक्युलरिज्म जस्टिस ये बिल्कुल ठीक नहीं है। RSS बीजेपी जो है उनको ये वर्ड्स चाहिए नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो चाहते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड और पुअर जो लोग हैं उनको उनके राइट्स ना दिए जाए और उनको स्लेव बना के रखा जाए, तो उनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को खराब किए बगैर वो जो है ये सब नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो बहुत पावरफुल वेपन है और RSS जो है उनको स्टॉप करना चाहिए ड्रीमिंग के वो ये कर सकते हैं, वो कभी भी इसमें सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। जितना भी पेट्रियोटिक इंडियन है वो हमेशा संविधान जिसको वो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का हमेशा जो है अपनी आखिरी दम तक जो है वो डिफेंड करेगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने कहा कि लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी के लीडर जो है वो अपना ये ख्वाहिश जो है उसको छुपा ही नहीं सके, वो बार बार कहते थे अब की बार 400 पार, तो यानी कि वो यही इसी तरह कर सकते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड या खराब करे और रीराइट करना चाहते थे और लोगों ने उनका ये एजेंडा देख ही लिया इसीलिए उन्होंने इनको भरपूर जवाब दिया और ये 400 सीट पार नहीं कर सके और अब ये फिर से अपना ओल्ड प्ले बुक जो है उससे खेल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है इसके रास्ते में खड़ा रहेगा और कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को खराब नहीं होने देगा, तो पाइजन बड़ी गर्मा गर्म वैसे चल रही है वहां भी हैं ही ऐसे। अच्छा जनाब और देखो जी आमिर साहब छोटा बंदा तो बेचारा की करे या बेचारे अब जो है हमारे माजिद भाई टाइप के जिधर से गाड़ियां इतनी चोरी, ब्रैड पिट के घर में डाका पड़ा है पाईजान, ब्रैड पिट के घर में जो है ब्रेक इन होया है, दो लॉ एनफोर्समेंट जो हालांकि ये ब्रैम्पटन में नहीं है, है जी, तो दो लॉ एनफोर्समेंट के जो एजेंट्स हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी कि हमको पहले तो पता नहीं था कि ये किसका प्रॉपर्टी है लोकेटेड एट लॉस फेलिस नेबरहुड में, तो बाद में हमें पता चला कि ये तो ब्रैड पिट का घर है। तीन लोग जो है वो इनका फेंस जो है उसको टाप के इनका जो घर का फ्रंट विंडो जो खुला हुआ था उससे अंदर चले गए। लॉस एंजलस पुलिस डिपार्टमेंट जो है LAPD उसने कंफर्म किया है ये बर्गली जो है बर्गलरी हुआ है। और अकॉर्डिंग टू पुलिस वो जो सस्पेक्ट थे उन्होंने घर सारे को रैनसैक किया यानी कि उल्टा पुल्टा किया जाहिर है कि वैल्यूएबल्स ढूंढने के लिए और एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट जो है चोरी करके ले गए हैं। वो कितने वैल्यू के हैं वो अभी पुलिस ने नहीं बताया। जाहिर है ब्रैड पिट का कार है इतनी हो सकता ना $2 की चीज हो गई है जी तो वो जो है वो काफी है। सरदार जी 3 जो है जनाब उसका तो कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं हो रहा है। लोग भी ट्रंप साहब की तरह से बीच बीच में से चीजें जो है उठा के ला रहे हैं। फिल्म के को प्रोड्यूसर जो है उन्होंने अब हानिया आमिर के कॉमेंट्स के ऊपर बात की है क्योंकि हानिया आमिर ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसको कावर्डली अटैक ऑन पाकिस्तान बोला था और उसके बाद हिंदुस्तान में इनको बहुत ब्रूटली ट्रोल किया गया था और इनको कहा गया था कि फॉरेन फिल्म में से इसको निकालो। अब को प्रोड्यूसर जो है गंभीर सिंह सिद्धू वो कहते हैं वो भी बड़े अपसेट है। वो कहते हैं जी कि इनको इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। शी हैज हिट बिलो द बेल्ट और अब मैंने डिसीजन पूरी तरह से बना लिया कि मैं कभी किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करूंगा। इसीलिए हमने कहा था कि हम इंडिया में फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे क्योंकि मेरी टीम लोगों को के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी आफ्टर पहलगाम और जो है ये मेरी टीम को 40% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट करेगी। दिलजीत और नीरू बाजवा की जो पहली फिल्म इससे पहले 2024 में आई थी जट एंड जूलियट 3 वो फर्स्ट पंजाबी फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया था जिसमें के 40% इंडिया से आए थे यानी कि 40 करोड़ हिंदुस्तान से आए थे। तो अब वो कहते हैं जी कि ये बिग रेवेन्यू चंक जो है उस पर मैं जो है वो मैं उसको मिस करूंगा। इसके साथ साथ और भी रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं कि बॉर्डर 2 जो अब बन रही है जिसमें कि दिलजीत दोसांझ है शायद उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। अलबत्ता न्यूज आई है कि ये फेक न्यूज है और दिलजीत को अभी तक यानी कि जो है वो तो निकाला नहीं है। ये रिपोर्ट्स आ रहे थे कि एक्टर सिंगर एमी विर्क जो है शायद इसको रिप्लेस करेगा। एमी विर्क की टीम ने कहा कि ये जस्ट स्पेक्यूलेशन है हमें अभी तक किसी ने किसी तरह की इस सिलसिले की कॉल नहीं की है। फिल्म बॉडीज जो है वो कॉन्स्टेंटली फिल्म मेकर्स एक्टर्स को लिख रही है कि दिलजीत दोसांझ को आने वाली तमाम हिंदी फिल्मों से जो है वो ड्रॉप किया जाए लेकिन सोर्सेज क्लोज टू द प्रोडक्शन जो बना रहे हैं बॉर्डर 2 उन्होंने कहा हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं है दिलजीत को रिप्लेस करने के लिए क्योंकि ये जो हमने सारी कास्टिंग थी 9 मंथ्स बिफोर कंफर्म की थी जिस वक्त पहलगाम का अनफॉर्चुनेट वाकया नहीं हुआ था। अभी हाफ ऑफ द फिल्म जो है वो शॉट हमने कर ली है और अब ये लॉजिकली फीजिबल नहीं है कि इसको हम लॉजिस्टिकली फीजिबल नहीं है कि हम इसको अब निकाले। जाहिर है अब इसको पूरा रिप्लेस करके नए एक्टर को लाएंगे एक तो उस एक्टर को फीस आप देनी पड़ेगी फिर आपको वो रीशूट जो करेंगे उसके पैसे होंगे तो फिल्म तो कहां की कहां पहुंचेगी। तो इसलिए हमारे जनाब बड़े ही प्यारे डेविड बेकम जो है जी वो हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं तो उनकी वाइफ जो है विक्टोरिया बेकम उसने बड़ा ही प्यारा उनको एक मैसेज दिया है। उनका आर्म सर्जरी हुआ है आज हॉस्पिटल के अंदर तो विक्टोरिया ने इंस्टाग्राम के ऊपर उनका हेल्थ अपडेट देते हुए उनको कहा विश किया है स्पीडी विक्ट्री और जो डेविड है वो देखे जा रहे हैं हॉस्पिटल के बेड पे रेस्टिंग एंड स्माइलिंग। उनके जो राइट आर्म है उसके ऊपर ब्लू स्लिंग है तो विक्टोरिया ने लिखा गेट वेल सून डैडी ऐसे करके और डेविड जो है उसकी सर्जरी हुई थी क्योंकि उसको वो कह रहे हैं जी अनबेरेबल पेन आर्म के अंदर शुरू हो गई थी। ये उस वक्त हुआ था जब इनको एक पुरानी इंजरी आई थी 2003 में जब ये एक मैच खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ और उसके बाद ये रूटीन स्कैन्स तो करते थे लेकिन उसके बाद अब जब बहुत तकलीफ शुरू हो गई तो स्कैन कराया तो मालूम चला कि एक जो पिन लगाई गई थी इनके आर्म के अंदर वो जो डिजोल्व हो जानी थी चीज को ठीक करने के बाद वो डिजोल्व नहीं हुई थी जो चुभ रही थी इनको और बहुत तकलीफ दे रही थी तो इसलिए इन्होंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा इस इश्यू को रिजोल्व करने के लिए। मसाय उजीरी जो हैं जनाब आपको पता ही है ट्रांटो रैप्टर थे मसाय उजीरी आपको पता ही है दे आर सिनोनिमस है ना तो वो जो थे वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट थे वो अब नहीं रहेंगे इसका ट्रांटो रैप्टर्स का हिस्सा। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज दोनों ने जो है वो ट्रांटो रैप्टर्स और उजीरी ने दे हैव पार्टेड वेज। अभी हालांकि फाइनल ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये है इससे पहले बहुत सारे चेंजेस इधर मुल्क में आ रहे हैं। ब्रेंडन शैनहैन जो है उनको भी लास्ट मंथ जो है वो दे लेट हिम गो मेपल लीव्स वालों ने। इसके साथ साथ बिल मैनिंग जो है जो कि ट्रोनो एफसी और आर्गोनॉट्स के साथ थे उनको भी जाने दिया गया। उजेरी जो है उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था ट्रोनो रैप्टर्स के लिए, उनको जो लोन एनबीए उनको टाइटल मिला था 2019 में जिसमें आपको पता है कि लोग नाचते हुए आए थे अमरीका से, तो और भी बहुत सारे बोल्ड स्टेप्स उन्होंने लिए थे। अंडर हिम रैप्टर्स मेड प्लेऑफ्स 7 स्ट्रेट सीजन फ्रॉम 2013 टू 14 एंड देन 2019 टू 2020। तो बहरहाल जी अब पता नहीं अंदर का स्टोरी क्या है। अर्लिंग हॉलैंड जो है जी उसने तो कमाल कर दिया, उसने स्कोर किए हैं 300 गोल्स ऑफ हिज करियर और ये लैंडमार्क है और इसने पीछे छोड़ दिया है रोनाल्डो मेसी एम्बेपे को एज मैनचेस्टर सिटी जो है उसने क्रश किया जुवेंटस को 5-2 से इन फीफा क्लब वर्ल्ड कप एनकाउंटर इन ऑरलैंडो। हॉलैंड जो है वो ही हैज रीच द मार्क इन 370 मैचेस जबकि रोनाल्डो ने जो है 300 गोल बनाए थे 554 गेम्स में, मेसी ने 418 गेम्स में और एम्बेपे ने 419 गेम्स में। तो ऐसे है जनाब। पाकिस्तान की नेशनल विमेंस क्रिकेट टीम जो है वो बहुत ज्यादा बिजी है ट्रेनिंग के अंदर क्योंकि उनका जो इंटरनेशनल सीजन है वो भी बहुत बिजी होने वाला है, तो बहुत जो है रिग्रस ट्रेनिंग शुरू हो गई है नेशनल क्रिकेट एकेडमी पे। ये खेलेंगी 3 मैचेस अवे मैचेस जो है T20 की सीरीज अगेंस्ट आयरलैंड एट क्लोन टर्फ क्रिकेट क्लब इन डबलिन में ऑन अगस्त 7, 10 एंड 11। इसके अलावा आईसीसी विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो होएगा उसके बाद जिसको के को होस्ट कर रहा है इंडिया एंड श्रीलंका। पाकिस्तान जो है वो उसका जो ओपनिंग मैच है बांग्लादेश के साथ है ऑन अक्टूबर 2 और इंडिया के साथ है अक्टूबर 5 को और लास्ट ग्रुप स्टेज